को वो अपना जो प्रभाव है ना, शनि जो उसका शनि का प्रभाव जो होता है ना वो शुरू हो जाता है। उस शनि को खुद को आने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं अभी आऊँगा और फिर बैठ जाऊँगा यहाँ पर, यहाँ को तकलीफ दूंगा, ऐसा नहीं। शनि का प्रभाव जो है वो ऐसे जनरलाइज हो जाता है सब जगह पे, लोगों की मति पर परिणाम होता है, लोगों की कष्ट में बढ़ हो जाती है, लोगों की कसौटियाँ हो जाती है, संकट आने लगते हैं, ऐसे सब उस लाइक बहुत सूक्ष्म प्रभाव होता है वो। ऐसे नहीं कि एक जगह पर मीरा रोड के कोने में वर्षा गिरी बहुत और वहाँ पर तूफान आया तो गवर्नमेंट ने ठीक कर दिया उसको, ये पूरी जगह पर पूरे विश्व पर उसका प्रभाव होता है। तो हमारे ज्योतिष में उसको कहते हैं ना साढ़े साथी, शनि का प्रभाव होता है वो। तो शनि या तो वक्र दृष्टि पे है, या शनि अंतरदशा में है, या महादशा में है, या ऐसे बहुत सारा उसका परिणाम होता है। कभी किसी की युति के साथ में उसका परिणाम खराब होता है, कभी किसी युति के साथ में उसकी महादशा होती है, कभी उसकी महादशा में किसी और ग्रह की युति होती है, ऐसा बहुत सारा परिणाम होता है। लेकिन हर व्यक्ति को अपने जीवन में शनि के प्रभाव से गुजरना ही पड़ता है, उसका सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस उस सीक्वेंस के बाद शनि की दशा आती है और हर सीक्वेंस में उसकी एक अंतरदशा भी आती है। हर ग्रह की महादशा में शनि की राहु की केतु की सबकी अंतरदशा आती है, उसका अलग अलग सफरिंग होता है। हाँ, इसका मतलब क्या होता है, भौतिक दुनिया में सफरिंग ही सफरिंग है, खाली नाम अलग अलग है उसकी। अभी मंगल की दशा है, अभी राहु की है, अभी इसकी है, इतना ही नाम अलग है, बाकी वो क्या होता है ना, कभी वड़ा पाव कभी समोसा, इतना ही फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। लेना तो आपको है ही है, ऐसा है। तो लेकिन शनि के प्रभाव में एक बात समझना जरूरी है, सबको समझना जरूरी है, जिससे आपका डर जो है शनि का वो नष्ट हो जाएगा। हाँ, इसलिए आपको ये जानना जरूरी है। बोले हाँ प्रभु जी, अभी तो साढ़े साथ चल रहे हैं ना शनि का, अभी तो क्या करेंगे, अभी 5 साल हो गए, 2.5 साल बाकी है, ऐसे बोलेंगे आप। लेकिन शनि के काल में अगर आपको प्रफुल्लित और आनंदित रहना है तो कुछ जानना जरूरी है आपको, क्योंकि शनि जो है ना वो एक्चुअली कभी भी आपको बुरा नहीं करता है, केवल वो आपको कसौटी करता है, खाली टेस्ट करता है आपको, और टेस्ट में कभी भी बहुत कष्ट होता है, लाइक ना ऐसा लगता है कि कुछ करे अभी उसके लिए। लोग क्या करते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, कुछ और करते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन उसमें, तो उधर वो फंस जाते हैं। जब वो उस कष्ट के उपाय के हेतु या किसी हेतु अगर वो कुछ गलत काम कर बैठते हैं, समझो किसी का दिमाग एकदम खराब हो गया तो वेश्या के पास गया समझो फॉर एग्जाम्पल, तो उसका पतन वहाँ शुरू हो जाता है, उसका नाश शुरू होता है वहाँ पर। तो शनि का जो कालावधि है वो कृष्ण कॉन्शियस तरीके से कैसे गुजारना है अपने को, एकदम स्ट्रांगली कृष्ण कॉन्शियस रहते हुए। तो शनि का कालावधि होते हुए भी आप पर उसका असर नहीं होगा बिल्कुल। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे शनि किसी का कोई बुरा नहीं करता है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, और केतु भी नहीं करता है और राहु भी नहीं करता है एक्चुअली स्पीकिंग, वो खाली हम अपना बुरा कर लेते हैं उसके रिस्पॉन्स में, जो होता है उसके रिस्पॉन्स में हम कुछ बुरा कर लेते हैं, ये जब करना छोड़ दिया समझो हमने, और फिर इतना दिमाग खराब हो गया जाके लहसुन भी खा लिया, बीच में फिश भी खा के आया, और बीच में दारू भी पी के आया जो पहले पीता था अभी छोड़ दिया था, फिर वापस शनि के प्रभाव में इतना त्रस्त हो गया दिमाग, जब छूट गया और फिर चलो अभी ज़्यादा हो गया, बहुत हो गया, अभी मैं एक पैग मार लेता हूँ, तब उसका पतन होता है। तो शनि के काल का जो बुरा असर दिखाई पड़ता है ना वो हमारे रिस्पॉन्स के वजह से दिखाई पड़ता है। शनि बाय इन हिमसेल्फ डजंट डू एनीथिंग विच कैन रियली हार्म यू। इसलिए शनि के काल का आपको पता है, शनि के काल में बहुत ज़्यादा जप करना चाहिए, बहुत ज़्यादा सेवा करना चाहिए, बहुत कृष्ण भावना में रहना चाहिए, जितना हो सके कृष्ण भावना में मग्न होते हुए जीवन चलाना चाहिए उस समय, तो शनि का प्रभाव नहीं होता है। जैसे हमारे कैंसर में कैसा होता है ना, कीमोथेरेपी में होता है ना सारे भूमे के बाल भी झड़ जाते हैं, तो अभी क्या है कि वो कीमोथेरेपी टाइम में एक विटामिन का कॉम्बिनेशन आया है, वो अगर आप लेंगे ना तो आपकी भवे वगैरह नहीं झड़ेंगे, जो मेरे वाइफ के टाइम पता नहीं था, एकदम भी ऐसी मेडिसिन आ गई है कि कीमोथेरेपी चलती रहेगी लेकिन उतना वो डिजास्ट्रस इफेक्ट है ना वो नहीं मिलेगा। उसी तरह से ये है, ये शनि का जो कैंसर है उसके ऊपर विटामिन भक्त कृष्ण का भक्ति का लेंगे तो जो डिस्ट्रक्शन और डिवस्टेशन होना है वो नहीं होगा, बाकी कष्ट होगा। कष्ट से कुछ बिगड़ता नहीं है, बाय द वे कष्ट आने से कुछ बिगड़ता नहीं है, कष्ट आने से आदमी उल्टा स्ट्रांग हो जाता है। अगर वो कष्ट को सही दिशा में सही तरीके से समझेगा कि कष्ट क्या है, व्हाई इट कम्स, उसका पर्पज़ क्या है, तो कष्ट हमका कभी हमारा बुरा नहीं कर सकता है। उल्टा ऐश आराम आएगा ना तो हमारा बुरा हो सकता है। बहुत ज़्यादा भोग आ गया, बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य आ गया, वैभव आ गया, तो हमारा विनाश आसानी से हो सकता है। एकदम गाफिल, क्या बोलते हैं उसको, व्हाट यू कॉल गाफिल, वो मतलब हमको कोई टेंशन नहीं है भाई, सब कुछ बढ़िया है ना, तो ये कंडीशन बहुत डेंजरस होती है। तो ऐश्वर्य की स्थिति में आदमी बहुत नुकसान अपना कर सकता है, लेकिन कष्ट में ज़्यादा उसका नुकसान नहीं होता, क्योंकि कष्ट में वो हमेशा अलर्ट रहता है, प्रेफुल रहता है। हाँ, और भक्त होगा तो अधिक भक्ति करके भगवान का आश्रय और तीव्रता से ग्रहण करता है। तो एनीवेज, शनि का प्रभाव आने लगा तो दशरथ ने क्या किया, सीधा सैन्य लेके दशरथ ने रथ में आरूढ़ होकर शनि को आह्वान दे दिया, फाइट विथ मी, अगर जीतोगे तो ही उसका प्रभाव हो सकता। तो बहुत भयंकर युद्ध हुआ। वो शनि भी इज नॉट ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी, शनि बहुत पावरफुल चीफ व्यक्ति है। बहुत भयंकर युद्ध हुआ, ये भी बहुत श्रेष्ठ योद्धा थे, तो उनका आसमान में, जमीन में, इधर उधर, थल में, जल में, सब जगह शस्त्र अस्त्र दिव्यास्त्र के साथ में युद्ध हुआ, बहुत भयंकर। और शनि को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या वीर आदमी है ये, हाँ, एक मनुष्य होते हुए भी मेरे साथ लड़ रहा है इतना शक्ति से। और वो भी उसका बल जो है, वो शक्ति तो है उसके अंदर, शास्त्र तेज है उसके अंदर, लेकिन अधिक तेज उसका भक्ति का है, स्पिरिचुअलिटी का है। चलो, युद्ध होता रहा और एक घटना में वो उसके अस्त्र के प्रहार से दशरथ जी महाराज बेहोश हो जाते हैं। तभी युद्ध आकाश में चलते रहता है और वो रथ से गिर जाते हैं बेहोश होकर। तो वो आकाश में से गिर रहे इतनी गति से तेज, तो जटायु उस समय ना अपना दीर्घ पंख फैलाकर इतनी गति से जाता नीचे कि गिरने वाले से अधिक गति से नीचे जाकर उनको अपने पंख पर झेल लेता है, पकड़ लेता है, और फिर ऐसे शांति से जमीन पर जाता है, उनकी देखभाल करता है, शुश्रूषा करता है। और फिर दशरथ जी महाराज होश में आते, योद्धा है ना, क्षत्रिय है वो, अरे मैं इधर क्यों हूँ, कौन लेके आया मुझे इधर, मैं युद्ध में क्यों नहीं हूँ। तो समझाते कैसे ऐसे हुआ और फिर मैंने आपको यहाँ पर लेके आया, बोले चलो अभी तुरंत लेके चलो मुझे। तो तुरंत उसको उठा कर ले जाते हैं, फिर रथ पे सवार कर देते हैं। फिर शनि महाराज जो है ना, वो इतने प्रभावित होते हैं, अरे मेरे द्वारा चोट खाकर कोई आदमी दोबारा मेरे सामने आने की, खड़े होने की हिम्मत कर सकता है, मेरे द्वारा चोट खाकर बेहोश होकर गिरने के बाद भी वापस दोबारा मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत इसके अंदर हो सकती है, साहस, उसी पर उन्हें युद्ध रोक दिया। बोलो बस, आई एम हैप्पी, बोलो मेरे आपके राज्य में मैं प्रवेश नहीं करूँगा, तथास्तु। तो उस समय वो दशरथ जी महाराज जटायु को बहुत ऋण प्रकट करते हैं, कृतज्ञता प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं बहुत कि आपने मुझे सही समय पर, इतने टाइमिंग इतना ज़रूरी है। हाँ, वो गिरने के बाद आते तो भी अच्छा ही था, लेकिन वो गिरने के बाद नहीं आए, वो गिरने के पहले उनको पकड़ा उन्होंने, गिरने के बाद भी आते तो उसकी वैल्यू थी सेवा करने की, लेकिन उन्होंने इस तरह से सेवा किया, क्या टाइमिंग बराबर मैच करके, क्योंकि युद्ध को देख रहे थे वो, न केवल वो देख रहे थे, सारे देवता भी देख रहे थे सब, कि जो जिस तरह से गए वो। तुमने कहा कि मेरा, मुझे पुत्र नहीं है अभी, कि जब मुझे पुत्र होगा तो मैं आपको मेरा पहला पुत्र आपको दे दूँगा। क्या हो? ऐसे भी बोलना कितना डिफिकल्ट है कोई, खाली फिल्मों में सुनते हैं आजकल डायलॉगों में ऐसा, लेकिन सच में ऐसा कहना इज नॉट अ जोक। बच्चा भी हुआ नहीं, वो बात सही है, लेकिन बच्चा होगा कभी तो पहला बच्चा आपको दूंगा, ऐसा वेरी डिफिकल्ट स्टेटमेंट, वादा कर लेता है वो। तो गिदड़ है, गिदड़ योनि का है, ये तो मनुष्य योनि के हैं। और यथावकाश फिर बहुत साल हो जाते हैं, दशरथ जी महाराज बूढ़े हो जाते हैं। आपको ठंडी लग रही क्या? दशरथ जी महाराज बूढ़े हो जाते हैं, फिर भी उनको पुत्र नहीं होता है। 350 कन रानियाँ हैं उनकी, तीन प्रधान और 350, तीन प्रमुख, बाकी अंतापुर में तो ऐसे राजों के बहुत रानियाँ होती हैं। तो वो फिर पुत्र कामिष्टि यज्ञ करने के सोचते हैं, वशिष्ठ मुनि राजगुरु को बुलाते हैं अपने पुरोहित जी को, और बहुत सुंदर यज्ञ का आयोजन करते हैं। और उस यज्ञ में बहुत दिन तक यज्ञ चलता है, और फिर उसके यज्ञ में लास्ट डे सारे देवता लोग आते हैं अपना आहुति स्वीकार करने के लिए। पर्सनली आते हैं, वो तो त्रेता की बात है ना, त्रेता युग की। और अब अपना अपना आवली देते हैं और देखते हैं कि दशरथ जी महाराज बड़ी तीव्रता से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए, बहुत हृदय से प्रार्थना कर रहे हैं। तो उनको लगता है कि हमको भी ऐसे रावण से इतना आतंक हो रहा है, इतना रावण से सब लोग, हम लोग पदच्युत हो गए हैं, अपना पद और सिंहासन रिक्त करके भाग के हम लोग गुफा में रह रहे हैं, हमारी भी स्थिति अच्छी नहीं है, ये भी मांग रहे हैं। तो विष्णु को पुकारते हैं, तो विष्णु आकाश में प्रकट हो जाते हैं। इनको दिखाई नहीं पड़ते दशरथ जी को, पहले देवताओं को दिखाई पड़ते हैं। और विष्णु से वार्तालाप होता है, बड़ा लंबा वार्तालाप है, वो बहुत सारा समझाते हैं उनको, ऐसा है, इनको पुत्र नहीं हो रहा है, हमें कष्ट हो रहा है, रावण इतना आतंक कर रहा है, और ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है उनको, फिर इतना उसके वजह से वो किसी के द्वारा वध नहीं हो रहा है उसका, और ना जानवर ना देवता से ना इससे ना उससे, उस सब जगह से वो अवध्य हो गया है, तो क्यों नहीं अभी आप इनके गर्भ में आकर उनको पुनीत कर देते हैं, वरदान दीजिए उनको पुत्र के रूप में अपना। तो भगवान कहते हैं कि तथास्तु, मैं अकेले नहीं, मैं चार रूप में आऊँगा हम चार आएंगे, हाँ मैं मेरे शस्त्र के साथ में मैं आऊँगा, तीनों चारों अवतार लेंगे। और आप जानते ही हो कि उन्होंने मनुष्य और जानवरों से मतलब अभय नहीं मांगा है ब्रह्मा जी से, क्योंकि मनुष्य और जानवर को तो अपना वो खाना समझते थे, इनको क्या वरदान मांगना है, इनके द्वारा बचने की क्या मांग करनी है, तो मेरे खाद्य है, आई डोंट हैव टू आस्क ऑल्सो कि मुझे मनुष्य से जानवर से बचाओ, जिनसे बचाना था उनसे वरदान मांग लिया मैंने। तो यही उसकी मूर्खता है, मूर्खतावश उसने मनुष्य और जानवर का अभय नहीं मांगा, तो मैं मनुष्य बन के आऊँगा और आप सब लोग जानवर बन के आना, वानर वंश में आना। और आप लोगों के अंदर ये भी शक्ति है कि आप अपने स्थान में रहते हुए अब एक साथ आप वहाँ रह सकते हो और अपने विस्तारों को अवतार दिला सकते हो, मतलब यू कैन बी साइमल्टेनियसली इन योर पोजिशन वेर एवर यू आर, एंड ऑल्सो यू कैन बी इनकार्नेटेड एज मंकीज। तो आप ऐसा कीजिए, सब लोग जाइए और अच्छे अच्छे कुल में बहुत घनिष्ठ और बहुत मजबूत शक्तिमान बंदरों के वानर के कुल में जन्म लीजिए आप, तो सब लोग चले जाते हैं। और ये सीन केवल उनके बीच में हो रहा है, ये सीन समाप्त होता है, देवता लोग चले जाते हैं, तो फिर अचानक यज्ञ से एक सुंदर सुनहरे रंग का पुरुष उत्पन्न होता है अग्नि से, और वह ऐसे आकाश में जाता है और अपने हाथ में सोने का कलश लेकर नीचे आता है, लेकिन ज़मीन के कुछ ऊपर ही खड़ा रहता है, ज़मीन को स्पर्श नहीं करता, और वो कलश राजा को देता है, कहता है कि आपके रानियों को ये महाप्रसाद दे दो, ये दिव्य महाप्रसाद है, आपके यज्ञ की पूर्ति के रूप में यह दिया गया, अपनी रानियों को उसको बांटिए और आपको यथावकाश दिव्य प्राप्ति होगी पुत्रों की। तो फिर वो अपने रानियों को लेकर महल में चले जाते हैं और आधा हिस्सा कौशल्या को देते हैं और आधा हिस्सा अपनी प्रिय पत्नी कैकेयी जो छोटी होती है उसको दे देते हैं, और दोनों आधा आधा निकाल के सुमित्रा को देते हैं। उसके बीच में जब वो देते हैं तो वहाँ से गरुड़ आते हैं और एक हिस्सा भगा के ले जाते हैं। एग्जैक्टली मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कैसे लिया होगा उन्होंने, कैसे उठाया होगा क्या, बट जो भी कुछ है, जैसे वो आदान प्रदान हो रहा है, वो स्वर्ण कलश उनको दिया जा रहा है, उसी समय गरुड़ आके झपट के एक हिस्सा ले जाते हैं। और वहाँ पर हम्पी में अंजनेय पर्वत पर वो केसरी वानरराज केसरी थे, उनकी पत्नी अंजनी जो है वो पुत्र प्राप्ति की तपस्या करती रहती, सो उनके हाथ में ला के देते हैं प्रसाद और वो उसको ग्रहण कर लेती है, तो उसके द्वारा हनुमान जी का जन्म होता है। एक्चुअली वायुदेव गरुड़ की सहायता से ये प्रसाद जो है वो अंजनी तक पहुँचाते हैं, वायुदेव की सहायता से होता है ये, क्योंकि वायुदेव का अंश जो है वो हनुमान जी के रूप में आना था, वायुदेव का ये था ना कि मेरा पुत्र हनुमान होगा, सूर्यदेव का था कि मेरा पुत्र सूर्य के रूप में आएगा, और इंद्र का कहना था कि मेरा पुत्र वाली के रूप में आएगा, ऐसे हर एक देवता ने अपना अपना अंश दिया सबको, तो वैसे वायु जी ने यही प्रसाद के द्वारा ये अंजनी को पहुँचाया और उसके गर्भ से उन्होंने अपने पुत्र को प्रकट किया, और यहाँ पर बचे हुए हिस्से को उन्होंने आधा कर दिया, फिर आधा आधा करके सुमित्रा को दे दिया, और तुरंत उन्हें कुछ दिव्य शक्ति अपने शरीर में प्रवेश करती हुई अनुभूति हुई कि समथिंग डिवाइन हैज एंटर्ड इन आवर बॉडीज, वेरी वंडरफुल फीलिंग ऑफ जॉय एक्स्टेसी एंड पावर कमिंग एंटरिंग इन द बॉडी, यू नो। तो जैसे हम लोग कुछ बहुत बढ़िया सुंदर महाप्रसाद खाते हैं तो कैसा लगता है आपको कि कुछ ऐसा दिव्य शक्ति अंदर आ गई है ना, एक समाधान और एक अनुभूति होती है आध्यात्मिक, जिससे हमको लगता है कि इट वॉज वेरी वंडरफुल क्वालिटी प्रसाद दैट वी हैड। तो वैसे भगवान का साक्षात स्वयं भगवान का आविर्भाव उसके शरीर में होता है, शशि देवी के शरीर में हुआ था, यशोदा की देवी के शरीर में हुआ था, रोहिणी के शरीर में हुआ था, पहले अदिति के शरीर में हुआ था, कृष्णी के शरीर में हुआ था, सबको ऐसे दिव्य अनुभूति प्राप्त हुई थी। जैसे इसको कहते हैं रियलाइजिंग द सेल्फ, आत्म साक्षात्कार कैसे होता है, वैसे ही भगवान की अनुभूति करना एक और एक अलग दर्जे का साक्षात्कार है। तो फिर प्रभु रामचंद्र का जन्म होता है चैत्र शुद्ध नवमी के दिन, चैत्र महीने के नए साल के आरंभ के बाद नवमी के दिन प्रभु जी, प्रभु रामचंद्र जी दोपहर के समय उनका जन्म होता है, और यथावकाश उसी समय कुछ देर के बाद में सुमित्रा देवी भरत और शत्रुघ्न को जन्म देती है, सॉरी लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म देती है और कैकेयी भरत को जन्म देती है। और जन्म से ही ऐसा रहता है कि राम का आकर्षण लक्ष्मण के प्रति, लक्ष्मण का राम के प्रति, और भरत का शत्रुघ्न के प्रति, और उनका दोनों का जोड़ी ऐसे बन जाती है कि एक व्यक्ति दूसरे का सेवक, लक्ष्मण राम का सेवक, शत्रुघ्न भरत का सेवक, उसके बिना वो रह नहीं सकता है, ना भोजन कर सकता है, ना खेल सकता है, ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है, ना सो सकता है, ना कुछ कार्य कर सकता है, ना विद्या सीख सकता है, ना कुछ भी, फुल गतिविधि जो है साथ में होती है। तो जैसे प्रभु रामचंद्र का जन्म हुआ, दशरथ जी महाराज कौशल्या को मिलने गए और बधाई दिया, सब लोगों ने गोधन दिया, अलंकार दिए, हीरे जवाहरात सब भेंट में दे दिए सबको, इतना खुशियाँ मनाई, सब जगह दीपक पताका आकाश से पुष्पवृष्टि हुई, अयोध्या के ऊपर सभी घरों में दीपक जले, सभी घरों में पुष्पवृष्टि, पुष्प मालाएं, पूरा अयोध्या उत्सव मूड में थे, सब लोग आनंद मना रहे थे कि हमारे राजा को आखिर में पुत्र प्राप्ति हुई। जो राजा भगवत परायण होता है उसकी पुत्र प्राप्ति की प्रजा को खुशी होती है, हमारे अगर सोनिया गांधी को पोता हो गया वो केयर्स, नोबडी केयर्स, बिकॉज क्या किया तुमने तुम्हारे लिए उन्होंने। दशरथ महाराज को पुत्र प्राप्ति हुई, हमारे दशरथ महाराज को वंश प्राप्त हो गया राज्य चलाने के लिए, ये हरेक प्रजा के लिए खुशी की बात है, एवरीबॉडी सेलिब्रेटिंग एट होम, मिठाई बना के, मिठाई बांट के, सुगंधित द्रव्य का छिड़काव करके, पताका चढ़ा के, फूल मालाएं चढ़ा के, सुरक्षा गले लगा के, सुंदर वस्त्र आभूषण पहन के, सब लोग फेस्टिवल मना रहे हैं। अब इतना आनंद का वातावरण है, अचानक कौशल्या से प्रभु राम चंद्र बालक को लेकर दशरथ जी चलने लगते हैं, सीधे चलने लगते हैं, सबको आश्चर्य होता है कहाँ जा रहे हैं। उसी समय एक पहाड़ जैसा सफेद रंग का गीदड़ अयोध्या की सीमा पर आके बैठ जाता है, सबको लगता है अरे इतना पवित्र घड़ी है, इसमें अशुभ वल्चर गीदड़ का आना अशुभ माना गया ना, गीदड़ का आना मतलब केवल जब मृत्यु होती है, जब हाहाकार मचता है, जब कोई भयंकर संकट आता है, बहुत मुर्दे हो जाते हैं तभी खाने के लिए गिदड़ आ जाते हैं, तो गिदड़ का आना बहुत माना गया कि अभी मृत्यु होने वाली है, किसी की भी हाहाकार मचेगा अभी। वो तो इतना बड़ा पहाड़ जैसा जिसका शीश जो है वो आकाश में लहरा रहा था, ऐसा गिदड़ सफ़ेद रंग का पहाड़ जैसा आके बैठ गया उधर सीमा रेशा पर, और ये जाते हैं लेके उसको दूसरा आश्चर्य, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, और सीधे जाके वो गिदड़ को मिलते, जटायु से उनकी प्रेम भेंट होती है। जटायु कहते हैं कि आप कितने धन्य हो, इतने सालों के बाद भी आपको मेरे दिए हुए वचन का आपको स्मृति है, क्योंकि रघुकुल की तो ये रीति थी ना, रघुकुल के लोग तो मर जाते थे लेकिन कभी भी अपने वचन को तोड़ते नहीं थे, उसके अनुसार वो आ गए। तो जटायु बहुत गदगद हो गए भावना से कि मेरा मित्र जो है वो कितना श्रेष्ठ है, नॉट ओनली इज अ ग्रेट पर्सन हु कीप्स हिज वर्ड बट हाउ ग्रेट इंटीग्रिटी ही है इसका, उसूल के कितने आदर्श, कितने पक्के हैं, इतना श्रेष्ठ गुण है उनका। तो कहते हैं कि मैं तो गिदड़ हूँ और मुझे मनुष्य की योनि के बालक की देखभाल करना, लालन पालन करना अवगत नहीं है, आई डोंट नो हाउ टू रेज ह्यूमन चाइल्ड, तो आप उसको अपने पास ही रखो, जब ये लालन पालन करके बड़ा हो जाएगा तब मैं उसको लेने आ जाऊँगा। तो ये कहते ठीक है, ये भी बात लॉजिकल है ना, इसकी देखभाल करना है तो वो गिदड़ कैसे करेगा। तो उसको दोबारा लेकर आते हैं, तभी सब रानियां बोलते हाँ आ गए हमारी बालक को लेकर, क्या हुआ? तो वो पूरी कहानी तब बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ, तब वो समझ जाते हैं। तो फिर राम जी का आविर्भाव आनंद उत्सव मनाया जाता है सब लोग। फिर वशिष्ठ जी आके सबको नाम रखते हैं, नामकरण करते हैं और सबका भविष्य बताते हैं। लेकिन ऐसे कहा गया कि जन्म के समय प्रसाद खाते समय जो प्रसाद था ना, वो सुवर्ण कलश वाला, तब उनको पता था कि ये भगवान है, लेकिन जैसे ही बालक का जन्म हुआ भूल गए। वात्सल्य जो था ना उनका, वो उस ज्ञान को कवर कर दिया उसने। उस वात्सल्य भाव जो था उनका, शुद्ध वात्सल्य भाव, उसके प्रभाव से वो जो शांत रस का ज्ञान था कि ये भगवान है, वो सब भूल गए। इसका परिणाम कई जगह दिखता है आगे भी। जब ही वो विश्वामित्र मुनि आए लेने के लिए, तभी भी विश्वामित्र मुनि बता रहे थे आप चिंता मत करो, वशिष्ठ ने भी आके बताया, कान में बताया आके कि एक्चुअली आपको पता है कि राम आपके कौन है, भगवान है, चिंता मत करना। वशिष्ठ जी जो ब्रह्म ऋषि है, वो भी दशरथ को बता रहे हैं कान में अलग जाकर कि डोंट वरी, आपको पता नहीं होगा शायद, मैं बता रहा हूँ दोबारा, ये स्वयं विष्णु है। हाँ तो सुन रहे हैं तब उनको अच्छा लग रहा है, लेकिन जब सुन के उन्होंने अपने पुत्रों को देखा ना, फिर वापस भूल गए, फिर रोने लगे। मतलब एक एश्योरेंस, फिर तुरंत भय, कह रहे मेरा पुत्र 12 साल का, अभी तो शस्त्र उठाने की प्रैक्टिस भी नहीं किया उसने, और ये तो रावण की बात कर रहे हैं। रावण की बात सुन के स्वयं दशरथ भी भयभीत हो गए। अरे बाप रे, रावण देवताओं को परास्त करके भगा कर भयभीत करके छोड़ा है उसको, बात उसके लिए आप मेरे पुत्रों को ले जा रहे हो? तो वात्सल्य ऐसे होता है। नंद महाराज की भी ऐसी अवस्था थी, लोग बोलते हैं अरे ये तो गिरिराज को उठाया, शायद विष्णु हो सकता है ये, बोले नहीं नहीं देवता हो सकता है, ये ऋषि मुनि हो सकता है, कोई सिद्ध आत्मा हो सकता है। दशरथ जी अपना नंद जी जो है ना, वो ठहाका मार के हंसते हैं, इतना हंसते कि पेट में दुखता है उनका, वो इतना हंसते वो गिर जाते हैं जमीन पर, रोलिंग इन द ग्राउंड लाफिंग। क्या बोल रहे हैं आप, ये थोड़ी भगवान है, जब आकाश में बादल गरजते ना तो ये भाग के आते हैं मेरे गोद में। जब माखन नहीं मिलता है तो, माखन नहीं मिलता है तो ले लो, माखन नहीं मिलता है तो ये पेशाब करके आता है उनके घर पे, कान में पानी डाल के बच्चों के आता है, ये कैसे भगवान हो सकता है? पॉसिबल आप बोल रहे भगवान है, बहुत सारी बातें बताते हैं एक लाइन से, और हर एक लाइन बोल के वो था का मार के हंस हंस के सब लोग हंसते हैं, फिर सब ग्वाल बाल, और सब लोग जो बात डिस्कस कर रहे थे ना वो भूल जाते हैं कि कोई महान व्यक्ति बोलते, तो आप तो लाला है। तो वात्सल्य प्रेम का ऐसा प्रभाव होता है, सत्य ज्ञान भी है उसको योग माया कवर कर देते। जब वात्सल्य उत्पन्न होता है, योग माया भगवान की इच्छा से अपने भक्तों के मेंदू से वो ज्ञान साफ कर देते, क्योंकि उससे उनका रस जो है उसकी वृद्धि होती है ना, जो रस का आनंद भगवान लेना चाहते हैं, उस रस की वृद्धि उस योग माया की सेवा से होती है। तो योग माया बहुत बड़ी सेवा करती है, भगवान को जो रस चाहिए वो रस की वृद्धि करने के लिए वातावरण निर्मित जो है वो योग माया करती है। इस तरह से प्रभु रामचंद्र का जन्म हुआ, उनका चरित्र जो है वो मनुष्य के लिए बहुत ही कल्याणकारी है, उसका हृदय से श्रवण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, क्योंकि प्रभु रामचंद्र का जो अवतार है वो केवल त्याग लीला है, जैसे चैतन्य महाप्रभु का भी कैसा त्याग लीला है, उन्होंने तो आके कुछ भोग तो लिया ही नहीं, केवल जनता के लिए सब त्याग कर दिया, नंगे पैर घूमे है ना, वनवास में रहे, राजपुत्र होने पर भी बंदमूल खाए, पर्णकुटी में रहे, पेड़ की खाल पहने, वलकल कहते हैं उसको, क्या भोग लिया उन्होंने? कुछ भी नहीं लिया, न सिल्क के वस्त्र पहने, न 56 भोग का आनंद लिया, न महल में रहे, ना कुछ उन्होंने जूता पहना, नंगे पैर, भयभीत, मतलब भयभीत तो नहीं थे वो, खुद नहीं थे, लेकिन भय वाले वातावरण में जिसमें राक्षस जंगल में आंधी तूफान गर्मी सर्दी ऐसे भयंकर प्रतिकूल वातावरण में उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया कई साल तक, लेकिन फिर भी वो बहुत आनंद में थे। मुझे संतों से श्रवण करने का मौका मिल रहा है और संतों की सेवा करने का मौका मिल रहा है, उनका संग प्राप्त हो रहा है, इसी में वो दोनों पति पत्नी आनंद में थे। कभी ऐसा जो नहीं क्या अभी हम लोग इधर आ गए, अभी क्या करें, चलो अभी टाइम बहुत है सुन लेते इनसे, भी ऐसा नहीं था उनका मूड, वो इसी भाव से प्रेरित हो रहे थे कि अभी हमको फ्री टाइम मिलेगा केवल संतों की संग में रहकर सेवा करने की। तो सीता देवी को बताया गया ना जब गर्भवती थी कि जाओ वो वाल्मीकि मुनि आश्रम में जाओ, सबसे पहला विचार क्या आया, अरे गर्भावस्था में मुझे संत के आश्रम का संग मिलेगा, इससे बड़ी भाग्य की क्या बात हो सकती है। इतने उत्कट और तीव्र काल में मुझे वाल्मीकि जैसे महान मुनि का संग मिलेगा, ये भावना से वो कितनी आनंदित हो गई थी। ये एक वैष्णव का लक्षण है, जैसे उनको भगवान के भक्तों का संग मिलता है, भगवान के भक्तों से सेवा करने का मिलता है मौका, उनके अस्तित्व का लाभ मिलने का मौका आता है, तो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। फिर सोचते नहीं कि हमको भी अच्छा खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रहने को ठीक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो संग उनका ही वही खाद्य है उनके लिए, वो सुन के एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। दैट इज साइन ऑफ अ डिवोटी, इफ समबडी गेट्स प्लीज्ड यू नो एनलाइवेंड बाय द थॉट ऑफ मीटिंग अ डिवोटी, दैट मीन्स ही इज अ वैष्णव। आप सबको प्रभु रामचंद्र के जन्मदिन की बधाई हो, प्रभु रामचंद्र आपके जीवन में ऐसे ज्ञान का और आनंद का प्रकाश डालें जिससे आपका जीवन भी भक्ति से समृद्ध हो जाए, और कैसे कठिन प्रसंग में भी प्रभु रामचंद्र ने कभी भी वो अपने आदर्श से नहीं ले, कभी भी नहीं, किसी भी क्षण पे वो कभी भी, सबसे बड़ी बात ऐसी है कि वो जिस तरह से उन्होंने बताया ना अपनी माता को कैकेयी को, अरे इतनी सी बात थी क्या, इतनी सी बात थी तो मुझे आपके आप बुलाकर बोल दिए होते कि मैं चाहती हूँ कि तुम वनवास में चले जाओ, इसीलिए इतना कोप भवन काला वस्त्र जमीन पर लेटना और पिताजी को बेहोश करना ये सब इतना करने की क्या जरूरत थी, बस मुझे बोल लेते आप कि बस जाना है, चले गए होते। वो भी ऐसा ड्रामा नहीं बनाया उन्होंने, डायलॉग नहीं बनाया कि मुझे ऐसे जाके बोलना है अभी ताकि लोग मुझे सराहना करें, हृदय से बोला उन्होंने, हृदय से एकदम हृदय से, और तत्क्षण चले गए वो तुरंत। और कैसे उन्होंने मैनेज किया वो सीन, हाँ पिताजी बेहोश हो रहे हैं, अभी जाके माता को बोलना है, फिर पत्नी को बोलना है, फिर भाइयों को बोलना है, मुझसे ज़्यादा अधिक दुखी वो जो है हो जाएंगे, तो सबको उन्होंने कैसे इमोशनली मैनेज किया, हाउ नाइसली काउंसल देम, हाउ ही ब्रोक द न्यूज़, हाउ ही वेंट टू देम, हाउ ही स्पोक टू हिज मदर, यू शुड एक्चुअली रीड ऑल दिस थिंग्स, अंडरस्टैंड हाउ टू ब्रेक अ बैड न्यूज़, हाउ टू टेक अ बैड न्यूज़, हाउ टू कन्वे द बैड न्यूज़ टू अदर्स। हमारे लिए स्पिरिचुअल केयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो, कोई बुरी घटना किसी को कन्वे करने है, किसी का डेथ हो गया है, किसी का कुछ हो गया है, कि तुम्हारे बेटे को कैंसर हो गया है अभी डायग्नोस हो गया है, कैसे एम्पैथिकली यू नो कन्वे करना है वो मैसेज, प्रभु रामचंद्र ने कितनी सुंदरता से मैनेज किया। अपने को तो उन्होंने परिणाम होने को नहीं दिया उस घटना का, उस निर्णय का, लेकिन कैसे एक कृतज्ञ हृदय से उन्होंने उसको स्वीकार किया, कहकर ये तो पूरे ऐसे इसके बाद आउट ऐसा कंप्लीटली टू डिस्ट्रॉय इमोशनली ऑल्सो टू एवरीबडी, बिना जरूरत के उसने उनको वलकल ला के दिया, अभी पहनो इसको, एक नई नवपरिणीत जो बहू है वधू है उनकी, जरूरत नहीं कि अपने हाथ से उसको पेड़ के खाल पहनाने का, संन्यास वस्त्र लो पहनो अभी इसको, राजपुत्र हो तुम, कल राजा बनने वाले थे, लो संन्यास का वस्त्र पहन के जंगल में चले जाओ अभी, कितना मतलब हाउ क्रूएल वन कैन बी लाइक दैट, शिकड़ा सेड की भाई ठीक है अभी जाओ आगे जाके पहनो, नहीं अभी पहनो, सबको अपने हाथ से दिया कि ये लो पहनो अभी इसको, मतलब शी वॉन्टेड टू बी श्योर कि अभी से आपको पहनना है, अभी से जाना है निश्चित रूप से, थोड़ा सा समय भी व्यर्थ नहीं करना है आपका। ऐसी भी घटना को उन्होंने इस तरह से, लक्ष्मण को भी क्रोध आ रहा था उस समय, इन सबको उन्होंने शांति से समझा बुझा के, फिर उसके बाद और एक आतंक, आतंक मतलब कैसे भावनाओं का आतंक, अयोध्या की जनता क्या बोल रही है, अरे हमको जंगल में अयोध्या बनानी है, इस अयोध्या को जंगल बनाना है, इनको वनवास में रहने दो और हम लोग जंगल में जाकर रहेंगे आपके साथ, जहाँ आप हैं वहीं अयोध्या है, हम लोग इस अयोध्या को जंगल बना देते हैं और जिस वन में आप जा रहे हैं उसको अयोध्या बना देते हैं। कितना बड़ा इमोशनल प्रेशर है उसके ऊपर, सब क्या वर्णन ऐसा आता है कि बालक स्त्रियाँ वृद्धा स्त्रियाँ वृद्ध औरत आदमी सब लोग अपना घर छोड़ के निकल गए, किसने कुछ कपड़ा नहीं लिया, कुछ भोजन नहीं साथ में नहीं लिया, ऐसे निकल गए स्ट्रेट, जैसे थे वैसे निकल गए और चलने लगे सीधे उनके पीछे, वैसा नहीं कि थोड़ी देर बाद में चले गए वापस, चलते ही गए उनके साथ, राम को बोले भी क्या करना क्या इनका, अभी सबको उन्होंने कैसे मैनेज किया होगा, जस्ट इमेजिन ना। जिस सपने आपको सोचो कि हम लोग उस पसंद में होंगे और वो हमारी स्त्री होगी, तो कैसे उसको मैनेज करना है, कितना लोगों को मैनेज करना है, कितना लोगों को मैनेज करते हुए निग्रह रखते हुए उस काम को भी करना है जो जिसको जाना तो है ही। ऐसा नहीं कि उस पर चेंज करके फिर कुछ डायल्यूट करना है। पिताजी की आज्ञा पालन करके वनवास तो जाना ही है, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ तबावला करना है। अपने ध्येय को निश्चित रख के दृढ़ रूप से करना ही है, लेकिन साथ में सब कुछ संभाल के जाना है। कितनी कुशलता से किया होगा उन्होंने काम। फिर आगे गए तो वो समाप्त नहीं हुआ। उधर राजा गुहा बोला कि वो तो उसका परम भक्त था। राजा गुहा ने कहा कि आप इस वन के राजा बन जाओ, बस अभी मैं आपका सेवक हूँ। उधर भी उनको टेम्प्ट कर रहे हो कि जो राजपद त्याग करके उनको वनवास में रहना है, वनवास के नियम का पालन करके, तो वो राजपद उनको ऑफर कर रहे हैं। बोले अरे राजा बनो, मैं आपका अभिषेक करा देता हूँ, और अभी से आप मतलब कुछ नहीं, मैं किसी सेना का सहायता नहीं ले सकता हूँ, किसी जगह बैठ नहीं सकता हूँ, कोई भोग दे सकता नहीं हूँ, मैंने आप मेरे महल में रहो, ये घर आपका ही है, ये सब रानियाँ ये सब आपकी सेवा में हैं, ये सब मेरे सेवक भी आपकी सेवा में हैं। नहीं, नो, लक्ष्मण जी पर्णकुटी बनाओ। एक एक काम को अगर करना है तो वो करने के लिए भी कितनी बाधाएं आ रही है उनके बीच में, कितना संकट, संकट नहीं बोल सकते उसको, लेकिन कितना टेम्पटेशन, कितना मोह बीच में आ रहा है कि ऐसे करो वैसे करो। लोग बोल रहे हैं कि चलो आपके नियम के अंदर भी एक कुछ ऐसा कर सकते हैं, वो भी कर सकते हो, है ना। तो किसको डायबिटीज़ ना, डायबिटीज़ तो उसको मीठा नहीं खाना होता है, तो लोग उसे 50 तरीके बताते हैं कि आप ना ऐसा करके खा सकते हो, वैसा करके खा सकते हो, कि शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा आपके, पर ये आप कर सकते हो, वो आप कर सकते हो, ऐसे हो रहा है उनको। उनको वनवास करना है तो वनवास में वो बता रहे हैं कि आप ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो। राम ने कहा नो, नो मीन्स नो। बहुत दुखी हो गए गुहा, राजा गुहा जो है बहुत दुखी हो गए, और खुद गए पर्णकुटी में और उनके चरणों की सेवा करने लगे। गया नहीं, नहीं कर सकते, कंदमूली देना है। वो सब लेके आए अपने घर से, तुमने कहा नहीं लक्ष्मण जी कंदमूल लेके आओ, खाएंगे। सब लोग लेट गए उधर। कितना श्रेष्ठ जीवन है राम जी, और किस लिए क्या उन्होंने सब कुछ हमारे लिए किया, हम और आपके लिए, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए। नहीं तो उनका सब ठीक चल रहा था, पता है ना आपको क्या हुआ, उनका शादी हो गया, सब बढ़िया चल रहा था, काम फर्स्ट क्लास विवाह हो गया उनका, और सब कुछ ठीक चल रहा था। राजा बनने वाले थे, फिर राज्य करने वाले थे, फिर देवता लोग बोले क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, अरे वादा क्या किया था उन्होंने, वो कुछ करना होगा, चलता होगा तो ऐसा चलता रहेगा तो आगे क्या होगा, फिर वो रावण का आतंक कौन सहन करेगा, ये तो राजा बनेंगे अपनी पत्नी के साथ रहेंगे और गृहस्थी में रहेंगे आनंद में, तो हमारा क्या होगा। तो ये सब सोचकर देवताओं ने मीटिंग किया और मंत्रा का दिमाग भ्रष्ट कर दिया उन्होंने। ये देवताओं की चाल थी। मंत्रा बहुत अच्छी औरत थी बाय द वे, मंत्रा इज नॉट विलन, मंत्रा विलन नहीं थी, मंत्रा को भगवान की सेवा में इस्तेमाल किया गया, उपयोग में लाया गया। इतनी बढ़िया सेवा करती थी वो मंत्रा, बहुत ही, शी वॉज अ वेरी चेस्ट सर्वेंट ऑफ कैकेयी। तो उसका दिमाग पहले देवताओं ने भ्रष्ट कर दिया, फिर जाकर आगे का रामायण हुआ, ताकि राम जी को वहां से निकालकर जंगल में जाना था। तो फिर कैकेयी विलन बन गई, मंत्रा भी विलन बन गई, लेकिन ऐसे कोई विलन नहीं था उसके अंदर, सब लोग कोई खलनायिका नहीं थे, सब लोग भगवान के सेवक थे। लेकिन भगवान की लीला को आगे बढ़ाने के लिए और भगवान को भी जो इच्छित था जनता की सेवा के लिए, वो करने के लिए भगवान ने ये सब किया। इतना सब कष्ट सहा, इतनी पीड़ा सही, बीच में 4 महीने का व्यवधान आया उनको, पता है ना आपको, चतुर्मास, कितना कष्ट सहन किया उन्होंने। सीतादेव ने कितना कष्ट सहन किया, उन्होंने कितना कष्ट सहन किया, बानरों ने कितना कष्ट सहन किया, फ्रस्ट्रेशन, नो रिजल्ट, इतना मेहनत किया फिर भी कोई सीतादेव का लक्षण नहीं, किधर तो पता नहीं चल रहा है। जिस जिस दिशा में वानर लोग गए ना, वो बोले कि अभी लौटना क्या है, अभी तो आत्महत्या करना है, क्योंकि हम लोग ने काम तो किया नहीं, सीता तो मिली नहीं हमको, क्या करना है, प्रभु जी को तो वादा किया था हम लोग ढूंढ के लाएंगे। और 3 दिशा में सब लोग गए, तो 4 दिशा में गए, चारों दिशा में कोई चांस नहीं था। चारों दिशा वाले 4 दिशा में, 4 दिशा के कोने में बैठकर सोच रहे हैं कि अभी सब लोगों को हमको आत्महत्या करनी चाहिए, क्योंकि अभी कोई आशा नहीं दिखाई पड़ रही। हनुमान जी भी निराश हो गए थे, तब जांबुवंत ने उनको याद दिलाया। कितना भक्तों के जीवन में भगवान की सेवा करते समय भी कितना तरह के इमोशंस आते हैं ना बीच में, फ्रस्ट्रेशन आता है, कोशिश करते हैं फल नहीं मिलता है, संकट आते हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, हर प्रकार के इमोशंस अपने भक्ति के जीवन में अनुभव होता है हमको, लेकिन फिर भी सभी लोगों ने कभी इसने कभी उसने, कभी ये डिप्रेस है तो इसने काउंसलिंग दिया, कभी ये डिप्रेस है तो इसने काउंसलिंग दिया उसको, कभी इसने प्रोत्साहन दिया कभी उसने दिया, कभी ये नीचे है तो उसने दिया, है ना, ऑल ऑफ अस गो अप एंड डाउन, नोबडी इज ऑलवेज ऑन टॉप। बहुत बढ़िया से भगवान की सेवा किया हनुमान जी को, क्या क्या हुआ भगवान ने टेम्पटेशन नहीं दिया ना, जैसे सीधा कलवेज को दिया ना चैतन्य महाप्रभु ने, वैसे ही हनुमान जी को भगवान ने बहुत टेम्पटेशन दिया, क्या चाहिए आपको, लोग दे दूँ आपके लिए, क्या करूँ, केवल हनुमान जी के अंदर का जो भाव है वो सब विश्व के सामने प्रकट होना चाहिए, इसलिए उन्होंने वो सब टेम्पटेशन किया है। हनुमान ने कहा कि मुझे केवल आपकी सेवा चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस आपकी सेवा करते रहेंगे और सेवा करने का मौका मिलता रहेगा, इतना वादा करो बस। फिर प्रभु रामचंद्र ने उनको गले लगाया, बड़ा ऐसे भक्त होगा तो क्या कमी है मुझे, भगवान होते हुए मुझे क्या कमी है अगर तुम्हारे जैसे भक्त होंगे तो। रामचरित्र जो है ना बहुत ही पवित्र चरित्र, आप लोग पढ़ो रामायण के बहाने, रामनवमी के बहाने इसको पढ़िए। और कोई प्रश्न है किसी का?
भगवान जी और शनि देव दोनों में एक बार युद्ध होता है,
हाँ,
फिर शनि जी हार जाते हैं, फिर हनुमान जी बोलते कि मेरे भक्तों को जो भी पूजा करते हैं देते शनिवार को, उसके पास जाने का ये क्या सच है?
सच है क्या? सच है। हनुमान जी इज नॉट ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी बाबा, शनि वनी तो ठीक है यार, शनि को मान है सब लोग, लेकिन भगवान के भक्त के सामने कोई मान नहीं होता है, सब डरते हैं भगवान के भक्त से, मालूम है क्या, ऐसे मतलब नेगेटिव फियर नहीं होता है वो कि मुझे मारेंगे कभी, मुझे नाश कर देंगे, ऐसे नहीं, मतलब एक आदरयुक्त भय होता है कि ये लोग महान लोग हैं, ऐसे साधारण जीव नहीं है, लगते हैं ऐसे नम्र और दीन ऐसे, लेकिन है बहुत पावरफुल जब, क्योंकि ये पावरफुल नहीं होते, उनके पीछे आदमी खड़ा है पावरफुल इनके पीछे जो खड़ा है वो इनको पावरफुल बना देता है। मैं हमेशा उदाहरण देता ना, मैं अभी मुझे याद है उदाहरण, वो जब हम लोग फ्लैट लेने गए थे ना, हम लोग हॉस्पिटल के लिए मीरा रोड के अंदर शांति नगर में, तो वो अमित टंडन नाम का वो हमारा फ्लैट का मालिक था जिसने हमको फ्लैट बेचा चैतन्य पॉलीक्लिनिक करने के लिए, अभी वो भक्तिवेदांत क्लिनिक नाम से प्रसिद्ध है। तो हम लोग फर्स्ट फ्लैट का एग्रीमेंट करके निकल गए घर से बाहर, तो वो भी हमारे साथ में विदा करने के लिए गेट तक आया, तो उसके बाद छोटा एक कुत्ता का पिल्ला था, छोटा सा बेबी पपी, तो वो जब से आया वो पीछे पीछे आया उनके पैर के नीचे, जैसे ही ये कुत्ते का पिल्ला साथ में आया तो बाहर से बड़े बड़े कुत्ते भौंकने लगे, क्योंकि ये पालतू कुत्ता है, वो तो स्ट्रीट डॉग्स है, तो इतना सा पिल्ला धबल जोरदार भौंकने लगा सबके ऊपर, इतना जोर से भौंकने लगा, सब पाँच छः बड़े बड़े कुत्ते एकदम स्ट्रीट वाले, वो खुद भौंक रहे हैं यार, ये भी अकेला सबके ऊपर भौंक रहा है, लेकिन एक किसी बड़े कुत्ते की हिम्मत नहीं हो रही उसके पास में आने की, क्योंकि वो अपने मालिक के दो पैर के बीच में खड़ा होकर भौंक रहा था, अपने मालिक के दो पैर के बीच में खड़ा होकर बड़ी शान से भौंक रहा था, तो उसके वजह से वो बड़े बड़े कुत्ते सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। हमारा स्ट्रेंथ क्या है? हमारा स्ट्रेंथ वो मालिक के दो पैर हैं, उसके बीच में हम खड़े हो जाते हैं। हनुमान जी भी ऐसे ही हैं, इसलिए हनुमान जी का ऐसा वर्णन आता है कि हनुमान जी भी अकेले रावण को मारने के लिए समर्थ थे। हनुमान जी को वरदान था कि उसको कोई मार नहीं सकता है। अरे हनुमान जी से वरदान जिसको मिले ना तो शायद और किसी को मिले होंगे, नहीं मिले होंगे, इतने वरदान हनुमान जी ने प्राप्त किए हैं जैसे किसी को नहीं मिले, बड़े अनोखे वरदान, हर एक देवता ने उनको पर्सनली आके वरदान दिया है। वो इतने महान थे, इतने महान थे वो कि सूर्यदेव ने जब उनको ज्ञान दिया ना, पता है ना कैसे ज्ञान दिया, बहुत अनोखे तरीके से ज्ञान दिया उनको। सूर्यदेव कहते कि मैं तो ऑफिस में एक जगह बैठता नहीं हूँ, मैं हमेशा मुँह पे रहता हूँ, मेरा ऑफिस ही मोबाइल है ऑफिस से तो तुम्हें पढ़ाऊँगा मैं, लेकिन साथ में आना होगा मेरे आपको, वो भी उल्टा चलना होगा, रथ में बैठ थोड़ी पढ़ता है कोई, सीखने वाला सिखाने वाला आदमी रथ में बैठा है, उसके आदमी विद्यार्थी भी रथ में बैठा है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो सीखने वाला आदमी जो है वो उल्टा दौड़ रहा है, और सिखाने वाला व्यक्ति जो रथ में बैठकर आगे जा रहा है। इस तरह से हनुमान जी ने पूरा ज्ञान जो है सूर्यदेव से ग्रहण किया, पूरा समय, पता नहीं कितने सैकड़ों साल गए होंगे उसके, रथ आगे जा रहे हैं, सूर्यदेव अपनी सेवा कर रहे हैं और सारा ज्ञान बता रहे हैं उसको। और उस ज्ञान के बाद में जब ज्ञान पूरे होता है तो वो दक्षिणा के बात आती है ना, दक्षिणा हनुमान जी कहते हैं दक्षिणा दो, तो सूर्यदेव ने क्या बोला होगा उनको, ये हनुमान जी की महानता का प्रतीक है। तो सूर्यदेव बोलते हैं कि मेरा भी पुत्र है ना वो नीचे आया हुआ है, उसकी रक्षा करना आपको, जब संकट आएगा तो उसकी सहायता करना। ही इज इन टेंशन कि माई सन सुग्रीवा इज डाउन एंड वाली और उसका कुछ गड़बड़ है, तो आगे कुछ संकट होगा। तब तक तो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन हनुमान जी जो अपना शिष्य है उससे वो एक तरह से वरदान ही मांग रहे ना कि मेरे पुत्र की सहायता करना।
प्रभु जी, इधर सुग्रीव और वाली भाई भाई है।
हाँ,
वो सूर्य देव के पुत्र सुग्रीव है।
हाँ, वाली इंद्र के पुत्र है,
पांडव पुत्र के जैसा।
मतलब ये सभी देवताओं के अंश है, अलग अलग घर में जन्मे हुए, उनका एक परिवार में जन्म हुआ, लेकिन एक वाली का, एक इंद्र का पुत्र वाली है, एक का सुग्रीव है। तो हनुमान जी ने सुग्रीव का साथ क्यों दिया, ये जो उन्होंने वरदान, मतलब वरदान क्या कहते हैं उसको, जो दुर्दक्षिणा के रूप में स्वीकार किया था ना, उसको ध्यान रखते हुए वो साथ गए उनके। हालांकि सुग्रीव से कई गुना अधिक शक्तिशाली है वो, लेकिन चूंकि उन्होंने सूर्यदेव को वादा किया था इसलिए वो उसके सेवक के रूप में रहे। ही वॉज गुड इनफ टू बिकम अ किंग बट ही बिकेम अ सर्वेंट। ये एक महान व्यक्ति का लक्षण होता है, जो इतना सारा बल विद्या शक्ति सिद्धि युद्धि होने के बाद भी एक नम्र सेवक बन के रहा हो। सुग्रीव का, सुग्रीव को पता भी नहीं था इतना से बलशाली है मेरा सेवक, जब छलांग लगाए ना तब समझाया कि अरे ये भी कोई व्यक्ति है। दे वर नॉट नोइंग, क्योंकि ये सब जो शाप वाप हुआ था ना हनुमान जी का, वो तो बचपन में हो गया था, मतलब उसके बाद कहानी बंद, वो उसके बाद किसको पता नहीं कि शक्ति किसकी कितने पास है। साधु ने शाप दिया उनको, कि शाप नहीं दिया वैसे, दिया कि भी तुम सब भूल जाओगे, जब तुमको जरूरत पड़े तो याद आएगा। उसके बाद जो शांत हो गए ना, तो बहुत बालक थे उस समय, उसके बाद तो कई सैकड़ों साल बीत गए, हजारों साल बीत गए होंगे। उसके बाद में सुग्रीव में उसका युद्ध विद्ध हुआ, वो छुप गया जाके किष्किंधा पर, ऋषिशृंग पर्वत पर जाकर। उसके बाद में सीता का खोज, उसके बाद में जांबुवंत की याद दिलाना, उसके बाद में लोगों को पता चलता है कि यार हनुमान जी क्या चीज़ है, तब समझ गए कि हनुमान जी क्या स्थिति है। इतना सब होने के बाद भी हनुमान जी, उसके बाद भी जब उनको खुद की याद आई अपनी शक्तियों की, तभी भी वो नम्र रहे, तभी भी कभी गर्व नहीं किया। सब लोग बोल रहे हैं विभीषण के बारे में, इसको मार डालो, ये तो राक्षस का भाई है, उसका दूत है, इसको विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो हनुमान जी को उसमें पता था कि वो कौन है, लेकिन वो ऐसे बोले नहीं, आप सब चुप रहो, मैं बोलता हूँ, मेरी बात सुनो, शांत रहे। प्रभु रामचंद्र सबको पूछ रहे हैं, उन्होंने अंगद को पूछा, जम्बुवंत को पूछा, सुग्रीव को पूछा, नल नील को पूछा, सबका सबका अभिप्राय लिया। समझो आपको कुछ बात पता है, समझो एक इम्पोर्टेंट बात आपको पता है, समझो हाँ, और मैं आपको नहीं पूछ रहा हूँ, सबको पूछ रहा हूँ, तो आपको ऐसा अंदर मिले कब मैं बोलूँगी, कब मुझे क्यों नहीं पूछते हैं, मुझे पता है इसका आंसर क्या है। कितना हम लोग ऐसे असम क्या कहते हैं उसको, एंग्शियस हो जाएंगे। हाँ, शांत बैठे। लास्ट में प्रभु रामचंद्र उनके पास मुड़ते हैं, हनुमान जी आपका क्या अभिप्राय, एकदम नम्रता से बोलते हैं उनको, बिल्कुल तब तक पेशेंटली वेट कर रहे हैं, शायद नहीं पूछते तो बोलते भी नहीं वो, क्योंकि जानते प्रभु रामचंद्र बैठे हुए हैं, पूछेंगे तो बोलूँगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं कि आगे जा जाकर घंटी बजा कर बताऊँगा कि मेरी बात सुनो आप, शांति से सुनो। हालांकि असली ज्ञान विभीषण के बारे में केवल उनको ही था, क्योंकि वो खुद जाके उसका घर में उसको मिलके आए थे वो, द रियल नॉलेज अबाउट विभीषण ओनली हनुमान जी हैड। फिर भी ही वॉज नॉट ऐसा कि मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मुझे पता है आप क्यों इनको टाइम पास कर रहे हो, मुझे सुनो, मेरी बात सुनो, नो नो एंग्जाइटी अबाउट इट। तो पूछा तो बताया शांति से, हर बार उन्होंने सलाह दिया है हर बार। इसलिए जब राम आए थे ना लक्ष्मण जी को लेकर साधु के वेश में, लेकिन धनुष लेकर, ऐसा अजीब वेश ना उनका, पैसेटिक भी है और धनुष लेकर भी आ रहे हैं, क्या कॉम्बिनेशन है। सुग्रीव भी परेशान हो गए थे, कहीं शायद वाले की तरफ से कोई आया होगा हमारा वध करने के लिए, तो किसको भेजा, हनुमान जी को भेजा, यही संभाल सकता है, इसका गुण जानना है, रहस्य जानना है, हैंडल भी करना है, तो ये हनुमान जी कर सकते हैं, उनको भेजा हमने। और राम स्वयं हनुमान जी का गौरव करते हैं उस समय, कि तुम इतने कुशल दूत हो कि तुम्हारी वाणी, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा बात करने का तरीका, तुम जो बोल रहे हो वो शब्द जो है वो इतने अमूल्य और कीमती है, कि तुम एक महान रत्न हो सकते किसी दरबार के, किसी राजा के, और मैं तुम्हारे व्यवहार से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तो राम जी ने हनुमान जी के व्यवहार का, जो डिस्गाइज में थे उस समय, गौरव किया उनका, एक कुशल राजा का प्रतिनिधि बन के आप आए हो, राजा का हित भी चाहते हो और मुझे भी आप ऑफेंड नहीं कर रहे हो, और आपको जो कहना है वो भी कह रहे हो, सब कुछ कर रहे हो आप एकदम कुशलता के। ऐसे हनुमान जी वाज द मोस्ट एक्सपर्ट एक्सपर्ट। और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे।
लेकिन जो लोग करते हैं वो सही?
जो लोग भगवान के भक्त नहीं होते हैं उनके ऊपर सभी दशाओं का, सभी ग्रहों का, सभी तारों का प्रभाव होते रहता है, उनका काम ही है, वो तो फैक्ट ही है वो। लेकिन जो भगवान का आश्रय ग्रहण करते हैं उनको कोई शनि की और कोई गुरु की, कोई बृहस्पति की, किसी की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा है, श्रद्धा की बात है। श्रद्धा नहीं है शनि का प्रभाव होगा, श्रद्धा है तो शनि खुद हट जाएगा। शनि भी डरता है ना भगवान को, जो भगवान के शरण में वो स्वयं है, उनकी सेवा में लगा हुआ है, उसकी शरण में कोई जा रहा है तो क्या हिम्मत उसकी उसको उसको तक कष्ट देने की। उसके हित में भगवान की इच्छा से कुछ देना है तो वो देगा, भगवान का आदेश के अनुसार, भगवान के निर्देश में, भगवान के सुपरविजन में, प्रत्यक्ष अवलोकन के अंदर फिर कुछ देगा वो, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। ये हमको विश्वास होना चाहिए। हरे कृष्ण। ठीक है, जय श्री राधे श्याम।